पार्टी के अंदर कियारा ने इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया था कि उसकी जान आयशा ने नहीं बल्कि इशिका ने बचाई थी। आयशा ने अपनी तरफ से इशिका और राघव को दूर रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सच सामने आ ही गया था। आसपास के लोग जो अब तक उनकी बातें सुन रहे थे, उन्हें पूरी बात समझ आ गई थी। अब वो नक्श और आयशा की तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। अब तक वो इशिका और अभिमन्यु को गलत ठहरा रहे थे, तो वहीं अब वो नक्श और आयशा के बारे में बातें बनाने लगे। नक्श को अभी भी यकीन नहीं हुआ तो उसने आयशा के चेहरे की तरफ देखा। आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और वो कांप रही थी। उसे देखकर नक्श समझ गया था कि आयशा ने उससे झूठ बोला था। इस वक्त नक्श के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। ऐसे लग रहा था जैसे नक्श और राघव का बस चलता तो वो अभी आयशा की जान ले लेते। इस सन्नाटे और हल्की फुसफुसाहट के बीच अचानक अभिमन्यु की गहरी और सख्त आवाज़ आई। हाँ, तो कोई मुझे पछताने का कह रहा था और ये भी ज्ञान दे रहा था कि मुझे लोगों को पहचानने की समझ नहीं है। आई थिंक तुम्हें किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए ताकि तुम्हें मासूम चेहरों और चालाक चेहरों के बीच में अंतर समझ आए। अभिमन्यु के चेहरे पर वही ना दिखने वाली हल्की सार्कास्टिक स्माइल थी। अभिमन्यु काफी सिंपल तरीके से सच सामने लाना चाहता था, लेकिन आयशा ने इशिका का तमाशा लगाने के चक्कर में खुद का बहुत बड़ा मजाक बना लिया था। राघव ने अभिमन्यु की तरफ देखा। वो कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर पहले उसने इशिका के साथ जो भी बर्ताव किया था, उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु की कहते ही रोहन ने सार्कास्टिकली तेज आवाज में कहा, अगर किसी की हेल्प करने पर बदले में यही सब होता है तो आज के बाद कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी की हेल्प हम करें और बदले में क्रेडिट और कोई ले जाए, और फिर बाद में सामने वाला हमें ही बर्बाद करने की धमकी दे। वैसे मिस्टर मित्तल, आपने मिस सिंघानिया से कहा था कि आप उन्हें रॉ मटेरियल नहीं देंगे और साथ ही ये मेक श्योर करेंगे कि उन्हें पूरी कंट्री में कोई रॉ मटेरियल ना बेचे। मुझे नहीं पता था कि आप अपने एहसानों का बदला इस तरह से चुकाते हैं, बोलकर रोहन ने स्लो क्लैप किया। राघव ने तुरंत इशिका की तरफ देखा। उसकी नजरें झुक गई थीं। वो आंखों ही आंखों में उसे सॉरी कह रहा था। राघव कुछ पल रुका और फिर इशिका से बोला, मेरी इस मिसअंडरस्टैंडिंग और बदतमीजी के लिए सॉरी बहुत छोटा शब्द होगा मिस सिंघानिया। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता हूँ और आई विल मेक श्योर कि फ्यूचर में कभी हमारी तरफ से आपकी कंपनी के लिए कोई सामान ना रोका जाए। बहुत अच्छे, मुझे इसी की उम्मीद थी, इशिका ने जवाब दिया। राघव की माफ़ी मांगते ही इशिका का गुस्सा भी गायब हो गया। वो जानती थी कि इसमें राघव की कोई गलती नहीं थी, वो बस आयशा से गुस्सा थी। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि एक तो उसने कियारा के साथ बदतमीजी की, ऊपर से इशिका ने जो किया उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया। राघव के बर्ताव के बारे में इशिका ने यही निष्कर्ष निकाला कि वो बहुत जल्दी फैसला लेता है और किसी की भी बातों में आ जाता है। ऐसे इंसान के साथ काम करना कोई खास फायदे की बात नहीं थी। इशिका से माफ़ी मांगते ही राघव को आयशा की याद आई। वो गुस्से में उस तरफ पलटा जहां आयशा खड़ी थी, लेकिन आयशा वहां से जा चुकी थी। आपस में हो रही बातचीत का उसने फायदा उठाया और भीड़ में से खिसक ली थी। राघव गुस्से में बोला, आयशा कहाँ है? वो अभी यहीं थी, वो भाग गई है, नैना ने गुस्से में जवाब दिया। आयशा के जाने के बाद नक्श वहीं पर था। राघव ने नक्श की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राजवंश, आपके फियांसे ने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और मुझे इस पर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब तक नक्श और आयशा भीड़ का फायदा उठाकर इशिका पर इल्जाम लगा रहे थे। जैसे ही नक्श पर सवाल उठा, रोहन ने जल्दी से मौके का फायदा उठाते हुए तेज आवाज में कहा, मिस्टर नक्श राजवंश, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं? आपने हाल ही में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, कंपनी को ज्वाइन किए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपको प्रमोशन पाने के लिए अपने टैलेंट और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, ना कि इस तरह सिफारिश का। इस तरह के प्रमोशन ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। वो क्या है ना, लोगों की असली सच्चाई सामने आ जाती है और फिर जो आगे बढ़ते हैं उनका डिमोशन भी हो सकता है। रोहन की बातें भीड़ को उकसाने के लिए काफी थी और वो अब नक्श के बारे में बात करने लगे थे। उनमें से कुछ लोग उस दिन मीटिंग में भी मौजूद थे जब इशिका के डॉक्टर मर्चेंट होने का सच सामने आया था। वो सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि आयशा ने पहले डॉक्टर मर्चेंट का सारा क्रेडिट खुद पर लिया, तो अब राघव की बहन कियारा के हेल्प करने की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। इन सब में वो नक्श को ही भला बुरा कह रहे थे। वो उसे मौका परस्त और बेशरम तक कहने लगे थे। उन सब लोगों की बातों के बीच राघव ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसकी आंखों के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। राघव की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अभिमन्यु के खिलाफ कुछ बोल सके। वो तो इतने लोगों के बीच उसे ये तक कह चुका था कि उसे अपनी आंखें चेक करवा लेनी चाहिए। लोगों की गॉसिप नक्श से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तेज आवाज में बोला, देखिए, ये सब आयशा का किया धरा है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता। आप सब अच्छे से जानते हैं कि मैंने सबके साथ अच्छा बिहेव किया है,
फिर आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं? किसी ने भी नक्श की बात का विश्वास नहीं किया। उन्हें यही लग रहा था कि इन सब के पीछे नक्श ही है। उनके हिसाब से नक्श और आयशा एक जैसे थे, तभी उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। राघव नहीं चाहता था कि इस बारे में लोग और बात करें, क्योंकि उनकी बातों में उसकी भी इंसल्ट हो रही थी। नक्श और आयशा की बातों में आकर उसने ईशिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। राघव ने अभिमन्यु की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर राजवंश, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मैंने जो शर्त रखी थी कि मिस्टर नक्श राजवंश को इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व किया जाए, मैं उस शर्त से पीछे हटना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में नक्श राजवंश कहीं से भी इन्वॉल्व ना रहे। ठीक है, अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा। यही एक सही वक्त था एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने का। नक्श ने पहले डॉक्टर मर्चेंट के नाम पर तो फिर अब मिस्टर मित्तल के नाम पर कंपनी में प्रमोशन हासिल कर लिया था। अभिमन्यु ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की तरफ देखा और तेज सख्त आवाज में कहा, नक्श का इस प्रोजेक्ट में कोई रोल नहीं होगा। इसके साथ ही उसे R&D डिपार्टमेंट में जूनियर मैनेजर का जो पोजिशन दिया गया था, मैं उससे भी उसे हटाता हूँ। नक्श अब R&D डिपार्टमेंट में Group 2 के टीम लीडर के अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि वो वहां पर ईमानदारी से काम करेगा। किसी को मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम है? भीड़ में बिल्कुल शांति छा गई थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब सब अभिमन्यु के साथ थे। वहीं नक्श गुस्से में गहरी सांस ले रहा था। एक साथ उसे अभिमन्यु ने 2 झटके दिए थे। ऐसे लगा कि उसने भीड़ में उसके गाल पर तमाचा मारा हो, और ये सब आयशा की वजह से हो रहा था। नक्श ने गुस्से में उन सबको देखा और फिर वहां से चुपचाप चला गया। भीड़ भी वहां से हट गई थी। कियारा अपनी व्हीलचेयर धीरे से खिसक कर ईशिका के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मिस सिंघानिया।
ईशिका ने कियारा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। कियारा ने आगे कहा, मेरा भाई बेवकूफ है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उससे गलती हो गई जो उसने तुम्हें दूसरी वाली मिस सिंघानिया समझा। उसने मुझसे कहा था कि उसने तुमसे मेरी इंसल्ट का बदला लिया है। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? कियारा अभी तक नहीं जानती थी कि राघव ने ईशिका की कंपनी तक बर्बाद करने की धमकी दी थी। राघव नहीं चाहता था कि कियारा के दिल में उसके लिए जरा भी नफरत पैदा हो। वो बेचैन लग रहा था और बेचैनी में अपने हाथों को रगड़ रहा था। ईशिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, नहीं, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया था। राघव के इतना सब कुछ करने के बाद भी ईशिका ने कियारा से कुछ नहीं कहा, ये देखकर राघव हैरान रह गया। राघव ने ईशिका के खिलाफ कुछ नहीं किया था ये जानकर कियारा को अच्छा लगा। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो इसका मतलब सच में ये दिल का एक अच्छा इंसान है। हाँ बिल्कुल, ईशिका ने सिर हिलाकर कहा। राघव ने कियारा से तो माफ़ी मांग ली थी, पर वो इतनी आसानी से ईशिका को जाने नहीं दे सकता था। अचानक उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, मुझे आयशा सिंघानिया से मिलना है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ रुकी हुई है? उसने जो भी गलत किया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और फिर तेज आवाज में पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, मिस्टर मित्तल की हेल्प करो, कोई भी काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए। वहीं ईशिका और कियारा आपस में बिल्कुल धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। इन सब में मिस्टर मित्तल ईशिका को हैरानी से देख रहे थे। उनकी आंखें ईशिका पर ही टिकी हुई थीं। उनके इस हरकत पर नैना ने ध्यान दिया तो उनके हाथ पैर हल्का सा मारते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है और तुम उन्हें इस तरह देख रहे हो? अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, गौतम ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने मिस सिंघानिया को कहीं देखा है। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने इन्हें कहाँ देखा था। अरे, ये तो उनकी बेटी होगी। किसकी बेटी? नैना ने हैरानी से पूछा। गौतम ने नैना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे ईशिका के पास गए और उससे पूछा, क्या आपकी मॉम का सरनेम मर्चेंट है? ईशिका ने उनके अचानक ये सवाल पूछे जाने पर हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, क्या हुआ, आपने मुझसे ये क्यों पूछा? ईशिका को उनकी बात सुनकर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ का सरनेम मर्चेंट नहीं बल्कि राधिका जी का सरनेम मर्चेंट था। क्या सच में? गौतम ने निराशा से कहा। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी मॉम का शादी से पहले सरनेम मर्चेंट नहीं रहा हो? ईशिका को देखकर उन्हें एक ऐसी औरत का चेहरा याद आया जो अपनी जवानी के दिनों में काफी हद तक ईशिका की तरह दिखती थी। हाँ, उनकी आंखों का कलर अलग था। ईशिका की आंखों का कलर ग्रे था, जो आदर्श की तरह था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ईशिका ने कन्फर्म करते हुए कहा। हाँ, हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, कई बार अनजान लोगों की भी शक्ल एक जैसी हो जाती है, गौतम ने मायूसी से कहा। ईशिका ने गौतम की बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं उनके इतना पूछने पर नैना उन्हें एक तरफ ले गई और उन्हें घूरते हुए बोली, मुझे जरा बताना कि मिस सिंघानिया किसके जैसी दिखती है? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड का चेहरा मिस सिंघानिया से मिलता हो। अचानक उसके आने पर तुम्हें अपनी एक्स की याद आ गई। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं जिस औरत की बात कर रही हूँ वो इस वक्त बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होगी। वो मेरी माँ की उम्र से भी बड़ी थी। उनकी बेटी का सरनेम भी मर्चेंट है। मुझे एक पल के लिए लगा कि वो औरत मिस सिंघानिया की नानी होगी।
गौतम ने उसे हल्के गुस्से में जवाब दिया। नैना ने तुरंत अपने किए की सफाई देते हुए कहा, अच्छा ठीक है ना, मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आगे से बोलने से पहले ध्यान रखूंगी। गौतम ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर खोए हुए अंदाज में कहा, मैंने उस बुजुर्ग महिला को बहुत सालों पहले देखा था, अगर तुम उनसे मिली होती तो तुम भी इतना ही इम्प्रेस होती जितना मैं हुआ था, उन्हें भुला पाना मुश्किल है। जिस तरह से गौतम उस औरत की बात कर रहा था, नैना उसके बारे में सुनकर थोड़ी उत्सुक हो गई थी। उसने तुरंत पूछा, कौन थी वो औरत, क्या वो दिल्ली में रहती थी? हाँ, किसी जमाने में दिल्ली में ही थी, लेकिन आज कहाँ है कोई पता नहीं है। अगर आज वो हमारे बीच होती तो मैं तुम्हें उनसे और मिस सिन्हानिया से जरूर मिलवाता, तब शायद जाकर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन होता, गौतम ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी ने राघव को आकर बताया कि आयशा अपने घर गई है, तो राघव अब एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द आयशा को उसके किए की सजा देनी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आयशा सिन्हानिया, तुम्हें अब पता चलेगा कि तुमने किसके साथ गेम खेला है। मिस सिन्हानिया को तो मैं सॉरी बोलकर अपनी गलती की भरपाई कर दूंगा, लेकिन तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारा क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, राघव ने सर्द आवाज में कहा। राघव ने एक पल भी नहीं सोचा और मिस्टर मित्तल के पास जाकर कहा, मैं सिन्हानिया विला जा रहा हूँ। आयशा सिन्हानिया के माँ बाप को भी इस बात की खबर होनी चाहिए कि उनकी बेटी क्या कुछ करती फिरती है। उसने जो भी किया मैं वो इग्नोर नहीं करने वाला हूँ, आगे से वो लोगों के साथ गेम खेलने से पहले दो बार सोचेगी।